नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर अपनी साझा चिंताओं और संवाद तथा कूटनीति से समाधान की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए घनिष्ठ सहयोग और समन्वय जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का शुभारंभ किया। मुख्य भाषण देते हुए फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर स्टूब ने कहा कि विकासशील और अल्प विकसित देश ये तय करेंगे कि भविष्य में विश्व व्यवस्था कैसी होगी और इसमें भारत की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट मिलनी चाहिए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि आगामी कुछ दिनों में होने वाले चर्चाएं नई क्षमताओं, प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई सोच पर केंद्रित होंगी।
Our discussions over the next few days.
अगले कुछ दिन में हमारी चर्चा नई क्षमताओं, सैन्य, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, मानव संसाधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा प्रौद्योगिकी के बारे में होगी। ये चर्चा दो नए विचारों, जोखिम लेने की बढ़ती प्रवृत्ति और साथ ही जोखिम कम करने तथा विविधीकरण के बढ़ते संकल्प के बारे में भी होगी।
The growing resolve to de-risk and diversify.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर स्टूब ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र केंद्रित बहुपक्षीय सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई है। फिनलैंड के राष्ट्रपति की भारत यात्रा संपन्न होने पर भारत फिनलैंड संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों देशों के नेताओं ने आपसी सम्मान, लोकतंत्र और विधि सम्मत शासन मूल्यों पर आधारित वैश्विक शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान की चुनौतियों के विरुद्ध वैश्विक सहयोग के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि और ग्रामीण परिवर्तन विषय पर बजट के बाद आयोजित होने वाले वेबिनार को संबोधित करेंगे। इसके अंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों, कृषि, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन तथा ग्रामीण आजीविका को शामिल करते हुए 8 अलग अलग वेबिनार सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। सत्र में पशुपालन मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्र के निवेश और उद्यमिता, मत्स्य पालन के लिए जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास पर विचार विमर्श होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय माय भारत के सहयोग से आज से वीबीजी रामजी राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान शुरू करेगा। इस अभियान का उद्देश्य विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के बारे में व्यापक जन जागरूकता फैलाना है। इस अभियान का लक्ष्य युवाओं को इस पहल के केंद्र में रखना और उन्हें प्रश्नोत्तरी, वीडियो चुनौतियां और रचनात्मक प्रतियोगिताओं से जोड़ना है, जिससे इस अभियान को एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जन आंदोलन बनाया जा सके। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि भारतीय घरेलू विमानन कंपनियों द्वारा संचालित होने वाली कुल 281 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और मंत्रालय पश्चिम एशिया की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। एयरलाइंस और संबंधित हितधारकों के समन्वय से एयर सेवा पोर्टल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और समर्पित हेल्पलाइन द्वारा इस अवधि में कुल 1461 शिकायतों का समाधान किया गया है। सहायता के लिए यात्री हेल्पलाइन नंबर 0112460 4283 और 0112463 2987 पर संपर्क कर सकते हैं। कतर की राजधानी दोहा में भारतीय दूतावास आज और कल विशेष तौर पर तत्काल पासपोर्ट नवीनीकरण संबंधी कॉन्सुलर सेवा के लिए खुला रहेगा। दूतावास ने एक सूचना में बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए किसी भी सहायता के लिए सप्ताह में 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन शुरू की गई है। भारत T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराया। भारत ने इंग्लैंड को 254 रन का लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड की टीम 246 रन ही बना सकी। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेला जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचने पर बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि टीम की दृढ़ता और कड़ी मेहनत सराहनीय है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।